आगे देखिए सबक भाई, अल वस्फु व हुवा कौनु लिस्मि दालन अला जातिन मुबहमतिन माखूजतिन मा बाज़ि सिफातिहा सवा उन कानत हादिही दलालतु बिहसबिल वज़ई मिस्लु अहमरा फइन्नहु मौज़ूउन लिज़ातिन मा उखिज़त मा बाज़ि सिफातिहा अल्लती हियल हुमरा। भाई असबाब मना सर्फ चल रहे हैं और साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि असबाब मना सर्फ नौ हैं और इनमें से दो सबब किसी कलीमे के अंदर आ जाएंगे तो वो कलीमा गैर मुनसरिफ बन जाएगा, या कोई एक इनमें से जो दो के कायम मकाम हो वो जब कलीमे में आ जाएगा तो वो कलीमा गैर मुनसरिफ बन जाएगा भाई। और वो असबाब जो दो के कायम मकाम हैं वो दो हैं भाई, एक है जमा और तानीस के दो अलिफ भाई। जमा यानी मुंतहल जुमुआ का जो सीगा है ये भी दो सबबों के कायम मकाम, और इसी तरह ये जो तानीस के दो अलिफ हैं एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा, तो ये जो हैं ये भी दो सबबों के कायम मकाम हैं। जब तानीस का अलिफ किसी कलिमे में आ जाए तो फिर कोई दूसरा सबब देखने की जरूरत नहीं, ये ही दो सबबों के कायम मकाम है। और फिर गुज़श्ता सबक में हम अदल के बारे में पढ़ रहे थे कि अदल जो है एक इसम का निकलना अपने सीगे असलिया से, वही सीगे असलिया से। और फिर ये दो किस्म पर है, तहकीकन और तकदीरन भाई। तहकीकन वो अदल जिसके अंदर उसकी असल मुहक्क हो यानी असल पर कोई दलील मौजूद हो, और तकदीरन वो है कि जिसके अंदर जो असल है वो मुहक्क नहीं बल्कि फर्ज कर ली गई है, उस पर गैर इंसराफ के अलावा और कोई दलील मौजूद नहीं। और गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा था कि जुमुए शाजा का इश्काल अदल पर नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जुमुए शाजा जो है जैसे अकवुस और अनयुब ये जमा है कौस और नाब की, और इनको इब्तिदाअन ही खिलाफुल कियास जो है अकवुस और अनयुब जमा बना लिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले इनकी जमा जाब्ते के मुताबिक अकवास और अनयाब बनाई गई हो और फिर अकवुस और अनयुब बनाया गया हो, इसलिए क्योंकि अगर पहले जाब्ते के मुताबिक इनकी जमा बनाई जाती फिर तो इनको शाज कहने की कोई वजह ही नहीं थी भाई, क्योंकि इनकी जमा जाब्ते के मुताबिक थी। तवज्जो है भाई, देखिए फिर सुनो, जुमा जो है इसको कोई भी शाज नहीं कहता। नहवी हजरात फरमाते हैं कि यहां जुमा जो है ये जमा है जमा की, लेकिन पहले ये जमा कायदे के मुताबिक बनाई गई यानी जुमउन या जमा या जमावात बनाई गई और फिर उससे फेर कर क्या बना लिया गया, जुमा बना लिया गया, तो इसको कोई भी शाज नहीं कहता। तो ये जो जुमुए शाजा हैं अगर उनमें भी ये मान लिया जाए कि पहले उनकी जमा अकवास और अनयाब बनाई गई फिर उससे फेरकर अकवुस और अनयुब बनाया गया, तो फिर तो इनको भी शाज नहीं कहना चाहिए। मालूम हुआ इनको अकवास और अनयाब से नहीं फेरा गया बल्कि बराह रास्त इब्तिदाअन ही क्या जमा बना ली गई, अकवुस और अनयुब बना ली गई। और फिर आप ये भी नहीं कह सकते, किसी के जहन में आएगा कि नहीं भाई हो सकता है बनी तो ये अकवास और अनयाब से ही हैं, लेकिन अकवास और अनयाब से जब इसमें अदल किया गया तो हो सकता है अदल के किसी जाब्ते की खिलाफ वर्जी हो गई हो, इस वजह से इनको शाज कह दिया गया हो। जुमा जो है उसमें भी अदल और अकवुस और अनयुब में भी फर्ज करो क्या है, अदल है, लेकिन वो था जाब्ते के मुताबिक, वो अदल के जाब्ते के मुताबिक जुमा बना, इसलिए उसको शाज नहीं कहा गया, लेकिन हो सकता है ये अकवुस और अनयुब इसमें अदल के जाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई हो इसलिए इनको जुमुए शाजा कहा गया हो। तो उसका भी बतलाया कि नहीं भाई कोई जाब्ता भी नहीं है, कोई जाब्ता भी नहीं है अदल का कि जिसके खिलाफ होने की वजह से इनको शाजा कहा गया हो। तो लिहाजा मालूम हुआ कि इनकी जमा अव्वलन पहले अकवास और अनयाब नहीं बनाई गई बल्कि बराह रास्त अकवुस और अनयुब बनाई गई। अगर आप ये तस्लीम नहीं करते तो फिर इनको जुमुए शाजा क्यों कहा जाता है, उसकी कोई वजह ही नहीं बनती भाई। अगर पहले अकवास और अनयाब बनाया गया हो और फिर अकवुस और अनयुब बनाया गया हो फिर तो इसको शाज कहना बनता ही नहीं है, इनको शाज कहना ही नहीं चाहिए भाई। बात समझ में आ गई। उसके बाद तकदीरन का लफ्ज आया था, मैंने बतलाया था कि यह तकदीरन ये भी मफूल मुतलक है बैतबार मौसूफ महजूफ के, आई खुरूजन तकदीरन, और फिर यह तकदीरन जो है इसका हमल हो रहा है खुरूज जात पर, लिहाजा ये मुकद्दर के माना में, इसमें मफूल के माना में ले लेंगे आई खुरूजन मुकद्दरन, और फिर इसको सिफत भी हाली ही नहीं बनाएंगे बल्कि सिफत भी हाली मुतअल्लिक ही बनाएंगे, आई खुरूजन मुहक्ककन असलुहू, वो खुरूज नहीं मुहक्कक बल्कि उस खुरूज की असल जो है वो मुहक्कक है भाई। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि यहां एक इश्काल होता है तहकीकन और तकदीरन पर कि खुरूज ये साहिब जामी के नजदीक मुकद्दर है, तो इसकी तकसीम कर दी किसकी तरफ, तहकीकन और तकदीरन की तरफ, भाई खुरूज खुद तकदीरन है तो फिर इसकी तकसीम तहकीकन की तरफ कैसे की जा सकती है, तो यह तो तकसीम उशय इला नफ्स ही व इला गैर ही लाजिम आया भाई, खुरूज तकदीरन है तो फिर इसकी किस्म तहकीकन कैसे बन सकती है, तो इसमें क्या खराबी लाजिम आई, तकसीम उशय इला नफ्स ही व इला गैर ही लाजिम आई, तो उसका भी जवाब हो गया भाई कि यह खुरूज जो है वह तहकीकी और तकदीरी नहीं है बल्कि उसकी असल जो है वह तहकीकी और तकदीरी होगी, खुरूज तो हर हाल में तकदीरी ही है भाई। उसके बाद उमर के बारे में बतलाया था कि उमर और जुफर जो हैं इनको अरब गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं और इनमें अलमियत के अलावा और कोई सबब हमें न मिला तो हमने इसमें अदल का एतबार कर लिया, और इनकी असल पर भी कोई दलील मौजूद नहीं थी तो अदल के लिए असल तो जरूर चाहिए तो उस असल को भी फर्ज कर लिया गया, तो ये इनकी असल आमिरुन और जाफिरुन है। उसके बाद फिर बाबे कतामा के बारे में आपने पढ़ा, बाबे कतामा से क्या मुराद है, मैंने आपको बतलाया था भाई कि बाबे कतामा से मुराद वो फाल वजन है जो आलम हो और आलम भी मुअन्नस जात के लिए हो और आखिर में उसके रा भी न हो भाई, तो ये जो इस तरह के लफ्ज हैं जो आलम हैं आयान मुअन्नसा के लिए और आखिर में रा नहीं है तो इनको बनु तमीम वाले गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, तो ये जो बाब कतामा है इसके अंदर भी अदल का एतबार किया गया और ये अदल तकदीरी की किस्म है, यानी इसकी असल जो है कातिमतुन फर्ज कर ली गई, क्या फर्ज कर ली गई, कातिमतुन इसकी असल फर्ज कर ली गई, हमारे पास उसके असल होने पर कोई दलील मौजूद नहीं, और इसमें अदल को क्यों फर्ज किया गया, इसकी नजीरों पर हमल करने के लिए, दरअसल हजारी और तमारी ये नाम जो हैं ये नाम है मुअन्नस जात के और इनके आखिर में रा है, बनु तमीम वालों के नजदीक ये मबनी है भाई, उलमाए नहव ने इनमें गौर किया तो सिर्फ दो सबब मिले, एक अलमियत और एक तानीस, अलमियत और तानीस दो सबब हैं, इनकी वजह से तो कोई लफ्ज मबनी नहीं बनता, इसकी वजह से तो लफ्ज गैर मुनसरिफ बनता है, मालूम हुआ इसमें कोई और सबब भी होना चाहिए ताकि गैर इंसिराफ से बढ़कर अगला दर्जा मबनी वाला हासिल हो जाए, तो बनु तमीम इसको क्या पढ़ते हैं, मबनी, तो लिहाजा अब मजबूरन नहवियों ने इसमें अदल का भी एतबार कर लिया कि इनमें अदल भी है, और जब इनके अंदर अदल का एतबार किया तो बाब कतामा के अंदर भी अदल का एतबार कर लिया, और मैंने बतलाया था कि ये फाल वजन जो है चार चीजों में आता है भाई, पूरे कलाम अरब में ये चार चीजों में फाल वजन आता है, या तो ये कभी आएगा इसमें फेल के अंदर जैसे नजाली बमाने इनजिल, और या कभी ये आएगा आलम मस्दर के तौर पर जैसे फजारी बमाने अल फजूर के, या ये आएगा वसफ के तौर पर जैसे या फसाकी बमाने फासिकतुन, और कभी ये आलम होगा आयान मुअन्नसा के लिए, फिर ये जो आलम है आयान मुअन्नसा के लिए ये फिर दो हाल हैं इसके अंदर, कभी इसके आखिर में रा आएगी और कभी इसके आखिर में रा नहीं आएगी। फिर दोहरा ये भाई, ये वजन कितनी चीजों में आता है, चार चीजों में, या तो ये आएगा किस में, इसमें फेल के अंदर जैसे नजाली बमाने इनजिल, या ये आएगा अलम मस्दर के तौर पर जैसे फजारी बमाने अल फजूर, या ये आएगा वसफ के तौर पर जैसे फसाकी बमाने फासिकतुन, और या ये अलम होगा आयान मुअन्नसा के लिए। और फिर ये जो अलम है आयान मुअन्नसा के लिए, इसमें दो सूरतें हैं, कभी इसके आखिर में रा होगी, कभी आखिर में रा नहीं होगी। कभी आखिर में रा होगी जैसे हवारी और तमारी, और कभी रा नहीं होगी जैसे कतामा। गोया कुल पांच किस्में हो गई, पांच किस्में हो गई। अहले हिजाज इन पांचों को मबनी पढ़ते हैं, अहले हिजाज इन पांचों को मबनी पढ़ते हैं, तो फिर तो ये हमारी बहस से ही खारिज हैं। नजाली ये भी मबनी अलल कसर, फजारी ये भी मबनी अलल कसर, फसाकी ये भी मबनी अलल कसर, कतामी ये भी मबनी अलल कसर। अहले हिजाज वाले ये कतामी को भी मबनी अलल कसर मबनी पढ़ते हैं, और हजारी भी मबनी अलल कसर। तो अहले हिजाज तो इन पांचों को मबनी अलल कसरा पढ़ते हैं, तो उनके नजदीक तो ये हमारी बहस से ही खारिज, क्योंकि हम तो मुअरब की बहस पढ़ रहे हैं और मुअरब के अंदर गैर मुनसरिफ का बात चल रहा है। बात समझ में आ गई। अलबत्ता बनु तमीम वाले इन पांच में से सिर्फ ये जो बाबू कतामा है कि जो अलम है, और अलम भी किसके लिए, आयान मुअन्नस के लिए, और जिसके आखिर में रा न आती हो, इसको वो गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। बाकी चारों को वो भी मबनी पढ़ते हैं। नजाली इसमें फेल है, उसको भी मबनी पढ़ते हैं। अलम मस्तर है फजारी, उसको भी मबनी पढ़ते हैं। वसफ है या फसाकी, इसको भी मबनी पढ़ते हैं। और इसी तरह हजारी और तमारी जो अलम है आयान मुअन्नसा का और आखिर में रा है, उसको भी ये मबनी पढ़ते हैं। सिर्फ ये कतामा जो है, ये बाब जो है, यानी जो अलम भी है आयान मुअन्नसा के लिए और आखिर में रा नहीं है, इसको बनू तमीम वाले गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब सिर्फ ये एक रह गया गैर मुनसरिफ, इसीलिए साहिब काफिया ने फरमाया व बाबी कतामा फी तमीमिन, के कतामा का जो बाब है बनू तमीम की लुगत के अंदर। भाई तो अहले हिजाज सारों को पढ़ते हैं मबनी, और बनू तमीम वो भी सारों को मबनी पढ़ते हैं सिवाय किसके, बाबू कतामा। और बाबू कतामा के अंदर जो है अदल तकदीरी है। इसके अंदर अदल तकदीरी क्यों है, वजह यह कि यह महमूल है अपनी नजीरों पर। इसकी नजीरें क्या हैं, हजारी और तमारी। जैसे वो फ़ाल वजन पर हैं, ये कताम भी फ़ाल वजन पर। जैसे वो अलम आयान मुअन्नसा के लिए हजारी और तमारी, इसी तरह कतामा भी अलम है आयान मुअन्नसा के लिए। तो जब नहवी हजरात ने हजारी और तमारी के अंदर अदल का एतबार किया, तो फिर इन्होंने कतामा के अंदर भी अदल का एतबार किया अपनी नजीरों पर महमूल करते हुए। बात समझ में आया कि जब अदल का एतबार किया है उस फ़ाली में जो अलम है आयान मुअन्नसा के लिए, तो फिर सारों के अंदर अदल का एतबार कर लिया, चाहे वो जबातुर रा हो चाहे जबातुर रा ना हो। भाई बात समझ में आ गई। तो हासिल यह हुआ कि कतामा के अंदर जो अदल का एतबार किया नहवी हजरात ने, वो इसको गैर मुनसरिफ बनाने के लिए नहीं है। गैर इंसिराफ के दो सबब तो इसमें पहले से ही मौजूद थे, ये इसमें अलमियत भी है और नीज ये मुअन्नस जात का नाम है, तो तानी से मानवी भी इसके अंदर मौजूद है। इसमें अदल का एतबार सिर्फ किस लिए करना पड़ा, अपनी नजीरों पर महमूल करने के लिए, कि इसकी नजीरें जो हजारी और तमारी थी उनके अंदर अदल को फर्ज किया, तो इसके अंदर भी अदल को फर्ज कर लिया। तो यहां पर कतामा में जो अदल को फर्ज किया गया वो इसको गैर मुनसरिफ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी नजीरों पर महमूल करने के लिए है। चुनांचे इसीलिए बाज शारहीन बाज उलमा फरमाते हैं कि साहिब काफिया ने यहां पर जो बाब कतामा को जिक्र किया ये अपने महल में नहीं है, इसको यहां जिक्र नहीं करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि यहां पर वो अदल जिक्र हो रहा है जो गैर इंसिराफ का सबब बनता है, और कतामा के अंदर जो अदल फर्ज किया गया है वो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बन रहा। कतामा तो पहले से गैर मुनसरिफ है, दो सबब तो उसमें पहले से ही मौजूद हैं, लिहाजा साहिब काफिया को यहां बाब कतामा को जिक्र नहीं करना चाहिए था। बात समझ में आ गई। तो ये अक्सर बनू तमीम का मजहब है कि वो हजारी और तमारी जो है इसको मबनी पढ़ते हैं, अगरचे उनमें से थोड़े से बनू तमीम वाले ऐसे भी हैं जो हजारी और तमारी को गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, मबनी नहीं पढ़ते। जब वो इसको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं तो इसमें तीसरे सबब का कोई एतबार करने की जरूरत ही नहीं, यानी अदल का एतबार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अदल का एतबार तो क्यों किया था नहवियों ने, इसको मबनी बनाने की वजह बयान करने के लिए कि यह मबनी क्यों है, दो सबबों से तो लफ्ज मबनी नहीं बनता, एक आलमियत है एक तानीस है। तो जब बाज़ बनू तमीम वाले इसको मबनी पढ़ते ही नहीं, गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं और दो सबब तो इसके अंदर मौजूद हैं, एक आलमियत और एक तानीस, तो अब अदल का एतबार करने की कोई जरूरत नहीं। और जब इसमें अदल का एतबार नहीं किया तो बाबू कतामा के अंदर भी अदल का एतबार करने की कोई जरूरत नहीं, वो भी गैर मुनसरिफ है और उसमें दो सबब मौजूद हैं, आलमियत और तानीस। फिर उसके बाद मैंने यह भी बतलाया था कि अदल के छह औजान हैं भाई, मफअल, फुआल, फआल, फिअल, फाअल और फुअल भाई, ये छह वजन हैं और इनमें से एक वजन भी फेल वाला नहीं। तो मालूम हुआ कि कभी भी अदल और वजन फेल इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि फेल के औजान अलग और अदल के औजान अलग हैं, एक वक्त में एक ही वजन आ सकता है, दोनों वजन नहीं हो सकते भाई। तो अदल के औजान छह हैं भाई, मफअल, फआल, फुआल, फिअल, फआल और फुअल, और इन औजान में से कोई भी वजन फेल नहीं है सिवाय एक वजन के, और वो फाल वजन है भाई, जैसे फाल जैसे जरब। लेकिन ये जो फाल वजन है ये वाला वजन फेल गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनता। तो लिहाजा वजन फेल और अदल कभी भी एक किस्म के अंदर जमा होकर गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेंगे। तो अदल जो है वजन फेल के साथ तो जमा नहीं हो सकता, अलबत्ता वसफियत और आलमियत तानीस वगैरह के साथ ये जमा हो जाता है, जैसे कि मिसालें गुजर गईं। देखो उबारा में अदल जमा है आलमियत के साथ, जुमा में अदल जमा है वसफियत के साथ, और इसी तरह कतामा के अंदर अदल जमा है, कतामा के अंदर अदल जमा है आलमियत और तानीस दोनों के साथ। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर भाई। अलवस्फु वहुआ कौनु लिस्मी दालन अलाजातिम मुबहमतिम माखूजतिम मा बाजी सिफातिहा। जी पहले मतन मतन देख लीजिए। साहिब काफिया फरमाते हैं, अलवस्फु शर्तुहु अय्यकून फिल असली, के वसफ जो है यह सबब बनता है गैर इंसिराफ का, लेकिन इसके सबब बनने के लिए शर्त यह है, अय्यकून फिल असली, कि यह असल में, कि यह असल में यानी वजह के एतबार से वसफ होना चाहिए। तवज्जो है, वसफ जो है वह सबब बनेगा किसका, गैर इंसिराफ का, लेकिन व शर्त हो अय्यकून फिल असली, इसके गैर इंसिराफ का सबब बनने के लिए शर्त यह है कि यह वसफ असल वजह में वसफ होना चाहिए, असल वजह में वसफ होना चाहिए, यानी जिस वक्त इस लफ्ज को, इस कलिमे को वजह किया गया था तो बतौर वसफ ही के वजह किया गया था। बाज औकात एक कलिमा वसफ नहीं होता लेकिन बाद में इस्तेमाल के अंदर वो कभी बतौर वसफ के इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे आपको बतलाएंगे कि अरबाउन का लफ्ज एक मुअय्यन अदद के लिए वजह है, यानी चार का अदद चार, और ये अरबाउन असले वजह में तो वसफ नहीं लेकिन कभी कभार इसको वसफ के तौर पर भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे मरर तो बिन निस्वतिन अरबाइन, मैं चार औरतों के पास से गुजरा। तो यहां देखो ये अरबाइन सिफत है निस्वतिन की, तो ये अरबाइन जो है असले वजह में वसफ नहीं है, अलबत्ता कभी कभार इसको वसफ के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे यहां पर निस्वतिन है मौसूफ और अरबाइन है उसकी सिफत, मालूम हुआ वो औरतें चार होने के साथ मौसूफ हो रही हैं, उनमें चार वाला वसफ मौजूद है कि उनकी तादाद कितनी है, चार है भाई। तो देखो अब ये जो अरबाइन है ये इसके अंदर वसफियत आ गई, लेकिन ये वसफियत असली नहीं है बल्कि आरजी है भाई, आरजी है भाई, इस्तेमाल के अंदर है आई है, लिहाजा इस वसफियत का कोई एतबार नहीं। लिहाजा मरर तो बिन निस्वतिन अरबाइन, ये देखो अरबाइन को मैं मुनसरिफ पढ़ रहा हूं, मुनसरिफ पढ़ रहा हूं, हालांकि अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो सबब मौजूद हैं, एक वसफियत है इस वक्त ये वसफ है और दूसरा वजन फेल है। अब अरबा बर वजने अकरम है भाई, तो वजन फेल भी है और वसफियत भी है, लेकिन यह वसफियत मुअसर नहीं, यह गैर इंसराफ का सबब नहीं बनती, क्योंकि गैर इंसराफ के लिए वो वसफ सबब बनेगा जो असल वजा के एतबार से हो। और फिर जब असल वजा के एतबार से एक वसफ हो तो बाद में गलब इस्मियत की वजह से अगर उससे वसफियत खत्म भी हो जाए फिर भी कोई नुकसान नहीं, वो फिर भी मुअसर रहेगा, वो फिर भी मुअसर रहेगा। जैसे आपको आगे बताएंगे, जैसे अस्वद, अस्वद एक काले रंग का सांप है, उसको अरबी में अस्वद कहते हैं। वैसे तो अस्वद का माना है काली चीज, कोई भी चीज काली हो उसको अस्वद कहा जा सकता है। मसलन कलम काले रंग का है तो हम कहेंगे ये अस्वद है, किताब काले रंग की है तो हम कहेंगे ये अस्वद है, वो सांप भी काले रंग का, तो अस्वद का लफ्ज असल वजा में वसफ है, असल वजा में वसफ है। फिर बाद में ये एक काले रंग के सांप के साथ ये नाम खास हो गया। अब बाकी चीजों पर भी बोला जाता है लेकिन बाकी चीजों के लिए कोई करीना चाहिए। मसलन कलम पड़ा है, मैंने हाथ से इशारा करके कहा हाजा अस्वद, अब आप समझ गए अस्वद से क्या मुराद है, ये वाला काला कलम मुराद है। या मैं आपसे कहता हूं हाजा किताबुन अस्वदु, देखो अब यहां किताब के बाद अस्वद का लफ्ज आया, अस्वद उसकी सिफत है, मालूम हुआ अस्वद से क्या मुराद है, किताब। तो बाकी चीजों के साथ भी अस्वद अभी भी इस्तेमाल होता है लेकिन उनके लिए कोई करीना चाहिए होता है, जैसे यहां लफ्ज किताब आ गया या जैसे मैंने कलम की तरफ इशारा कर दिया। अगर बगैर करीने के अस्वद बोला जाए तो फिर उससे वो सांप मुराद होता है। मसलन अरब किसी दूसरे को बतलाता है रअइतु अस्वदा, अब देखो यहां कोई लफ्ज वगैरह नहीं जिससे पता चले अस्वद से क्या मुराद है, कोई करीना नहीं है। जब कोई करीना ना हो तो क्या मुराद होगा, वो सांप मुराद होगा। तवज्जो है, तो उस काले रंग के सांप का नाम ही अस्वद पड़ गया भाई। तो अब देखो इस पर इस्मियत गालिब आ गई, इस्मियत गालिब आ गई यानी गलब इस्मियत की वजह से यह नाम बन गया। गलब इस्मियत पहले भी बयान हो चुका है के लफ्ज का अपने बाज़े अफराद के साथ खास हो जाना, यह है गलबा इस्मियत। लफ्ज का अपने बाज़े अफराद के साथ खास हो जाना यह है गलबा इस्मियत। मसलन अस्वद, अस्वद तो हर काली चीज को कहते थे, हर काली चीज के लिए वजह था, इन्हीं काली चीजों में से एक फर्द क्या था, काला सांप भी था, तो उसके साथ ये कसरत इस्तेमाल यानी इसके बारे में ये इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उस सांप का नाम ही अस्वद पड़ गया भाई। अब जब अस्वद बगैर करीने के बोला जाए तो क्या मुराद होता है, वो काला सांप। तो अस्वद और चीजों में भी इस्तेमाल होता है लेकिन उनके लिए करीना चाहिए, जबकि सांप के लिए इस्तेमाल करना हो तो फिर किसी करीने की जरूरत नहीं, आप जैसे ही अस्वद कहेंगे जहन में फौरन वो काला सांप आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, गलबा इस्मियत। तो अब देखो ये उसके लिए इसम बन गया, अब इसमें वसफ वाला माना नहीं, ये उसका नाम बन गया है, बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं गलबा इस्मियत, पहले वसफ था अब ये अपने बाज़े अफराद के लिए इसम बन गया है गलबा इस्मियत। देखो इसम होना इस पर गालिब हो गया, अब वसफ होना इसमें नहीं है, तो ये उस काले सांप के लिए नाम बन गया भाई। तो जब नाम बन गया वसफियत खत्म हो गई, वसफियत खत्म हो गई, लेकिन असले वजा में ये वसफ था लिहाजा वो जो वसफियत असले वजा के एतबार से थी अभी भी मुअसर है। लिहाजा सांप नजर आया आप ये नहीं कहेंगे हाजा अस्वदुन, नहीं तनवीन नहीं लाएंगे, ये गैर मुनसरिफ है। दो सबब इसमें कौन कौन से हैं, एक तो वजन फेल है अस्वद बर वजन अकरम है, और दूसरा वसफियत असलिया है, फिलहाल वसफियत नहीं है लेकिन असल में क्या था, इसमें असल में यह वसफ था, तो यह वसफियत जो असल में थी वो अभी भी मोतबर है। तो लिहाजा मालूम हुआ कि वसफ जो है वो गैर इंसराफ का सबब बनता है लेकिन उसकी शर्त यह है कि वह असल वजा में वसफ होना चाहिए, जब असले वजा में वसफ हो तो फिर गलब इस्मियत इसको नुकसान नहीं देता। गलब इस्मियत की वजह से इसका गैर इंसराफ का सबब होना खत्म नहीं होता। गलब इस्मियत आ जाए फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं, ये फिर भी सबब बनेगा किसके लिए, गैर इंसराफ के लिए। देखिए भाई मतन मतन जरा, कहते हैं अलवसफु शर्तुहु अन यकून फिल असली, वसफ जो है इसके गैर इंसिराफ का सबब बनने के लिए शर्त यह है, अन यकून फिल असली, कि यह वसफ होना चाहिए असल में, यानी वजा के एतबार से, जब इसको वजा किया गया था तो वसफ के तौर पर वजा किया गया हो। भाई फला तजुर्रुहुल गलबतु, तो फिर इसको गलबा जरर नहीं देता, जब असले वजह के एतबार से वसफ है फिर गलबा इस्मियत आ भी जाए, किसी चीज के लिए इसम बन भी जाए तो भी अब ये गलबा इस्मियत इसको नुकसान नहीं देगा। गलबा इस्मियत जब इस्मियत इस पर गालिब आ गई, अब ये वसफ नहीं है, अब वसफ नहीं है, तो अब वसफियत तो खत्म हुई, लेकिन गलबा इस्मियत इसको अब नुकसान नहीं देगा। असले वजा के एतबार से यह वसफ था तो वसफियत अभी भी मोतबर है, वो अभी भी मुअसर है, वो अभी भी सबब बनेगी गैर इंसराफ का, तो असवद क्या होगा? गैर मुंसरिफ होगा। आगे जरा मतन और मतन देखिए भाई, फलिजालिका, और इसी वजह से सोरेफा, सोरेफा यानी मुंसरिफ है, मररतु बिनिस्वतिन अरबाइन, यह मररतु बिनिस्वतिन अरबाइन में जो अरबाइन का लफ्ज है यह मुंसरिफ है। क्यों मुंसरिफ है? क्योंकि शर्त पूरी नहीं, अगरचे अरबाइन में दो सबब हैं, एक वसफियत, यह वसफ बन रहा है निस्वा के लिए, निस्वतिन मौसूफ अरबाइन सिफत, तो वसफियत भी है और वजन फेल भी है, लेकिन यह वसफियत मोतबर नहीं, क्योंकि अरबा का लफ्ज असले वजा में वसफ नहीं था, बल्कि असले वजा में तो यह आदद था, लिहाजा यह वसफियत मोतबर नहीं, तो यह अभी भी मुंसरिफ ही है। वमतना अस्वदु व अरकमु, और इसी वजह से मुमतना है अस्वद और अरकम, लिल हयति, इस हाल में कि यह सांप के लिए है, यानी सांप के नाम है। अस्वद एक काले रंग का सांप है, अस्वद का लफ्ज वैसे तो हर चीज के लिए वजा था, हर काली चीज के लिए, लेकिन फिर एक काले रंग के सांप के लिए यह इसम बन गया, गलत इसमें कसरत इस्तेमाल की वजह से, तो गलबा इस्मियत आ गया, इसम होना इस पर गालिब आ गया, अब वसफ होना क्या हुआ? खत्म। जबकि अरकम वो चतकुबरे रंग का सांप है जिसमें सफेद और काले निशान होते हैं, सफेदी भी उसमें होती है और काला रंग भी होता है, तो उस चतकुबरे सांप को जो है अरकम कहते हैं। तो देखो अरकम ये असले वजा में वसफ था, हर चतकुबरी चीज के लिए अरकम का लफ्ज वजा था, कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें सफेद और काला रंग इकट्ठा हो, कुछ सफेद है कुछ काला है, या जगह जगह सफेद है जगह जगह काला रंग है, तो उसको अरकम कहते हैं, उसके लिए अरबी में अरकम का लफ्ज वजा है, लेकिन बाद में कसरत इस्तेमाल से यह एक सांप के लिए नाम बन गया, गलबा इस्मियत आ गया, यह उसके लिए इसम बन गया, इसम होना गालिब हुआ, वसफ होना खत्म, वसफ होना खत्म, तो अब ये उसके लिए नाम बन गया। अब जब अरकम का लफ्ज मुतलक बोला जाए यानी बगैर किसी करीने के, तो इससे वो सांप मुराद होता है, और मैंने ये भी बताया कि अस्वद और अरकम सांपों के नाम बन गए, लेकिन और चीजों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और कोई काली चीज हो उसके लिए भी अस्वद इस्तेमाल होता है, और कोई चतकुबरी चीज है उसके लिए भी अरकम इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी चीजों में इस्तेमाल के लिए करीना चाहिए। क्या चाहिए? करीना चाहिए, यह मुराद है। बगैर करीने के जब अस्वद और अरकम बोलेंगे तो इससे क्या मुराद होगा? वो दो किस्म के सांप जो हैं वो मुराद होते हैं। तो अब देखो इन पर इस्मियत गालिब आ गई है, जब इनको सांप के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अब ये इसम है वसफ नहीं, लेकिन गलबा इस्मियत कोई नुकसान नहीं देगा, क्योंकि असले वजह में यह क्या है? वसफ है, तो वसफ मुअसर होगा और यह गैर मुनसरिफ इनको पड़ेंगे। भाई इसीलिए मैंने क्या कहा कि वमतना अस्वदु व अरकमु, देखो मैं गैर मुनसरिफ पढ़ रहा हूं दोनों को, तो इसी वजह से मुमतना है अस्वद और अरकम, लिल हयति, इस हाल में कि ये नाम है सांप के। तो दो तफरीआत की भाई, फलिजालिका इसी वजह से अरबाउन मुनसरिफ है और अस्वद और अरकम गैर मुनसरिफ है, दो तफरीआत की इसी वजह से, अरबाउन क्या है? मुनसरिफ, और अस्वद और अरकम क्या है? गैर मुनसरिफ। ये दरअसल पीछे जो दो बातें जिक्र की उन पर तफरीआ की है, एक क्या कि असले वजा में वसफ होना चाहिए तो इस पर तफरीआ कर दी, इसीलिए मररतु बिनिस्वतिन अरबाइन में अरबाइन क्या है? मुनसरिफ, क्योंकि वह असले वजा में वसफ नहीं। और दूसरी बात क्या जिक्र की थी कि असल वजह में जब वसफ हो तो फिर गलबा इस्मियत नुकसान नहीं देता, और इसीलिए अस्वदु और अरकमु जो हैं ये गैर मुनसरिफ हैं, क्योंकि ये असल वजह में वसफ हैं तो अब इनको गलबा इस्मियत इनमें आ भी गया है, वो उनके लिए नुकसानदेह नहीं, यानी इनके सबब बनने को वो खत्म नहीं करता, अभी भी ये सबब बनेंगे। बात समझ में आ गई। अब आइए जी शरा के साथ देखिए, कहते हैं अलवसफ वह कौनुल इस्मी दालन अला जातिम मुबहमतिम माखूजतिम मा बाज़ सिफातिहा। भाई देखिए वसफ जो है ना, वसफ वसफ उस इसम को कहते हैं जो जात मुबहमा पर दलालत करे और उसमें उसके बाज़ औसाफ भी मलहूज हों। तवज्जो है, वसफ किसे कहते हैं? वसफ उस इसम को कहते हैं, जैसे देखो जारिबुन मजरूबुन शुजाउन वगैरह ये सब वसफ हैं। जारिबुन भी क्या है? वसफ। मजरूबुन भी क्या है? वसफ। शुजाउन बहादुर ये भी क्या है? वसफ। अहमर, अहमर का माना सुर्ख, ये भी वसफ है। इसी तरह अबयज ये भी क्या है? वसफ है। तो वसफ उस इसम को कहते हैं जो जात मुबहम पर दलालत करे। किस पर? जात मुबहम पर दलालत करे और नीज उसमें उसके बाज़ औसाफ भी मलहूज होते हैं, बाज़ सिफात भी मलहूज होती हैं। देखो ये जरा किताब पर तारीफ देखो, अलवस्फ वह कौनुल इस्मी दालन अला ज़ातिम मुबहमतिम माखूजतिम मा बाज़ सिफातिहा। देखो यहां आया कौनुल इस्मी, जरा इस कौन को खत्म कर दें, सिर्फ यूं पढ़ें इस्मुन दालुन अला ज़ातिम मुबहमतिन। इबारत समझ में आ रही है? इस्मुन दालुन, दालुन लाम मुशद्दद है भाई, इस्मुन दालुन अला ज़ाति मुबहमतिन, वो इसम जो दलालत करने वाला हो अला ज़ाति मुबहमतिन, किस पर? एक मुबहम जात पर, माखूज़तिम मा बाज़ सिफातिहा, कि वो जात माखूज हो अपनी बाज़ सिफात के साथ, यानी उसकी बाज़ सिफात उसमें मलहूज हो, इसको कहते हैं वसफ। वसफ एक खास किस्म के इसम का नाम है। वसफ किसका नाम है? एक खास किस्म के इसम का नाम है, जैसे जारिबुन ये खास किस्म का इसम है, इसको क्या कहते हैं? वसफ। इसी तरह मजरूबुन ये खास किस्म का इसम है, इसको वसफ कहते हैं। शुजाउन ये एक खास किस्म का इसम है, इसको वसफ कहते हैं। अहमर ये खास किस्म का इसम है, इसको वसफ कहते हैं। अभी मैंने तारीफ आपको बतलाई, इस्मुन दालुन, देखो जरा गौर करो, जारिबुन, जारिबुन एक इसम है, दालुन जो दलालत करने वाला है, अला जाति मुबहमतिन, किस पर? एक मुबहम जात पर। देखो मैंने कहा जैद, आपका एक साथी है जैद, आपके जहन में वो मुतायन जात आ गई, तो लफ्ज़े जैद देखो एक मुतायन जात पे दलालत कर रहा है। मैंने अमर कहा, आपके एक साथी का नाम अमर है, वो फौरन आपके जहन में आ गया, तो देखो अमर ने भी एक मुअय्यन जात पर दलालत की। लेकिन ये जो वसफ होता है ये जात मुबहम पर दलालत करता है। जारिबुन का माना पिटाई करने वाला, लेकिन क्या जब मैंने जारिबुन कहा कोई मुअय्यन शख्स आपके जहन में आया? नहीं, ये जारिब जैद भी हो सकता है, ये अमर भी हो सकता है, ये बकर भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है। तो ये किस पर दलालत करता है? जात मुबहम पर। फिर जिसके साथ आप जोड़ेंगे ये उसके लिए वसफ बन जाएगा। जैदुन जारिबुन, देखो अब जारिब को जैद से जोड़ दिया। बकरुन जारिबुन, तो जारिबुन को बकर से जोड़ दिया। अमरुन जारिबुन, तो जारिबुन को किससे जोड़ दिया? आमर से। तो देखो जात मुबहम है, आप इसको किसी भी जात के साथ जोड़ सकते हैं। तो जारिबुन मजरूबुन शुजाउन वगैरह ये ऐसे इसम हैं, इस्मुन दालुन अला जाति मुबहमतिन, ये ऐसे इसम हैं जो दलालत करते हैं किस पर? मुबहम जात पर, यानी मुअय्यन नहीं होती। जारिब कोई भी जात जिस जो जर्ब लगाने वाली है उसको क्या कहेंगे? जारिब। ये कोई मुअय्यन जात नहीं है। तो वसफ किसे कहते हैं? ऐसा इसम जो दलालत करता है किस पर? जात मुबहम पर, और मुबहम जात पर मुतलकन दलालत करता है या उसमें उसके कोई सिफत भी मलहूज होती है? सिफत भी मलहूज है। जारिबुन उसको कहेंगे जिसमें जारिबियत वाली सिफत हो, मजरूब उसको कहेंगे जिसमें मजरूबियत वाली सिफत हो, अहमर सुर्ख उसको कहेंगे जिसमें हुमरा यानी सुर्खी वाली सिफत हो। बात समझ में आ रही है? शुजा उसको कहेंगे जिसमें शुजात वाली सिफत हो। तो वसफ किसका नाम? वसफ एक खास किस्म के इसम का नाम है। तवज्जो है, वसफ एक खास किस्म के इसम का नाम है। शुजाउन ये इसम क्या है? वसफ। जबकि बाज इसम वो वसफ नहीं होते, जैसे रजुल, रजुल वसफ नहीं है भाई, रजुल तो जात का नाम है। किताब, किताब वसफ नहीं है, किताब जात का नाम है। कलम, कलम जात का नाम है, ये वसफ नहीं है। जबकि जारिबुन, मजरूबुन, शुजाउन वगैरह ये जो सिफत के सीगे हैं इनको वसफ कहते हैं। वसफ भी कह लें चाहे सिफत कह लें। उलमाए बसरा वसफ और सिफत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जबकि उलमाए कूफा नात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नून आइन और लंबी ता, वो इसको नात कहते हैं। जबकि बसरा वाले सिफत भी कहते हैं इसको और वसफ भी। तो सिफत और वसफ किसका नाम है? एक खास किस्म के इसम का नाम है। कौन सा इसम? जो जाते मुबहम पर दलालत करता है और उसके अंदर उसके कुछ औसाफ भी मलहूज होते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो ये तारीफ भाई, वसफ किसे कहते हैं? इस्मुन दालुन, मैंने बताया ना कौन इस्मी दालन, इसमें कौन को जरा खत्म कर दें। इस्मुन दालुन वो इसम जो दलालत करने वाला हो, अला जातिम मुबहमतिन एक मुबहम जात पर, माखूजतिम मा बाजी सिफातिहा कि जो माखूज हो यानी मलहूज हो अपनी बाज़े सिफात के साथ। किसके साथ? बाज़े सिफात के साथ। बाज़े सिफात कहा ये एक को भी शामिल है, दो को भी और ज्यादा को भी। जैसे मैंने बयान किया था कि अलिफ लाम हर्फी जो है इसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है, तो इसके जरिए इशारा किया जाता है और इशारा कभी जिंस की तरफ होता है कभी अफराद की तरफ। अगर जिंस की तरफ इशारा हो तो इसको अलिफ लाम जिंसी कहते हैं, अगर अफराद की तरफ इशारा हो फिर या तो तमाम अफराद को इशारा होगा या बाज को। अगर तमाम को इशारा है तो वह अलिफ लाम इस्तिगराकी, अगर बाज को इशारा है तो वह बाज खारिज में मुतायन होंगे या मुतायन नहीं। अगर वह मुतायन है खारिज में तो वह अलिफ लाम महदे खारिजी, और अगर खारिज में मुतायन नहीं तो अलिफ लाम अहदे ज़हनी। तो देखा अलिफ लाम अहदे खारिजी किसको कहते हैं? जिसके जरिए तमाम अफराद को नहीं इशारा होता, बाज को इशारा होता है। किसको? बाज। देखा अब बाज में सब आ गए, एक भी हो सकता है, दो भी, ज्यादा भी। जैसे मैंने कहा अर रजुल क्या तर्जमा? वो आदमी। देखा किसी मखसूस शख्स की तरफ इशारा है। मैंने कहा अर रजुलानी क्या माना? वो दो आदमी। देखा दो की तरफ इशारा है। मैंने कहा अर रिजालू, देखो जमा ले आया, वो सब आदमी। तो इसमें देखो तमाम अफराद की तरफ इशारा नहीं है। अर रजुलू के जरिए इशारा हुआ एक की तरफ, अर रजुलानी के जरिए इशारा हुआ दो की तरफ, और अर रिजाल के जरिए इशारा हुआ दो से ज्यादा की तरफ। बारह कुल नहीं है, कुछ मखसूस मिकदार है। तो देखो एक, दो और दो से ज्यादा सब की तरफ इशारा हो सकता है। तो हर एक को अलग जिक्र करने के बजाय कह देते हैं बाज़े अफराद, इशारा है बाज़े अफराद। तो अलिफ लाम अहदे खारिजी के जरिए बाज़ अफराद की तरफ इशारा हो सकता है, वो एक भी हो सकता है, दो भी और ज्यादा भी। यहां पर भी इसी तरह आया कि माखूज अतिम मा बाज़ सिफातिहा कि वो जात माखूज होती है अपने बाज़े सिफात के साथ, यानी बाज़ सिफात उसकी मलहूज होती हैं, उसमें एक भी हो सकती है, दो भी, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अमूमन एक ही सिफत मलहूज होती है। तो मालूम हुआ हासिल कलाम क्या कि वसफ किसका नाम है? एक खास किस्म के इसम का नाम है। जारिबुन, फातिहुन, मानिउन, मजरूबुन, मफ्तूहुन, शुजाउन, हसनुन, और ये सारी देखो सिफत के सीगे हैं। इसी तरह अहमर, अबयज, ये सारे सिफत के सीगे हैं। तो ये वसफ हैं। ये क्या हैं? वसफ। तो मालूम हुआ वसफ किसका नाम है? एक खास किस्म के इसम का नाम है। अब इश्काल ये होता है कि भाई ये जो असबाब मना सर्फ हैं, तवज्जो से सुनो भाई, ये जो असबाब मना सर्फ हैं ये सारे आरास की कबील से हैं, ये अरज हैं। ये क्या हैं? अरज। और वसफ, वसफ तो जात का नाम है, वो खास किस्म के इसम का नाम है भाई। तवज्जो है, ये जितने असबाब मना सर्फ हैं ये आरास हैं, आरास हैं, यानी ये अरज बनते हैं किसी चीज के लिए, सिफत बनते हैं ये। जबकि आपने जो वसफ जिक्र कर दिया ये तो वसफ तो जात का नाम है भाई। वसफ किसका नाम? जात का नाम है। तो असबाब मना सर्फ में आपने जात को कहां से जिक्र कर दिया? ये तो सारे औसाफ थे भाई। तो ये असबाब मना सर्फ सारे औसाफ हैं भाई। जैसे मसलन देखो उमर, उमर इसमें दो असबाब मना सर्फ कौन से? एक आलमियत और एक आदल। तो देखो ये जो उमर का लफ्ज है ये आलमियत के साथ मौसूफ हो रहा है, आलमियत इसकी सिफत है और नीस आदल इसकी सिफत है भाई, आदल के साथ ये मौसूफ हो रहा है। जैसे फातिमत, ये फातिमा का लफ्ज अलम होने के साथ मौसूफ हो रहा है और नीस तानीस के साथ मौसूफ हो रहा है। ये असबाब मनासर्फ क्या है? औसाफ हैं। बात नहीं समझ में आई? देखो उमर, उमर एक इसम है, उमर क्या है? एक इसम है और इसकी सिफत क्या है? ये अलम है और इसकी सिफत क्या है? इसमें अदल है भाई। तो ये आलमियत के साथ भी मौसूफ हो रहा है और अदल के साथ भी मौसूफ हो रहा है। बात समझ में आ गई? इसी तरह फातिमा भाई, फातिमा का लफ्ज मौसूफ हो रहा है किसके साथ? आलमियत के साथ भी, आलमियत इसकी सिफत है और नीस ये किसके साथ मौसूफ है? तानीस के साथ। तो मुअन्नस होना इसकी सिफत है। जैसे इब्राहिमा, इब्राहिमा इसमें एक तो आलमियत है एक उजमा है भाई। आलमियत देखो ये इब्राहिम का जो कलीमा है, ये जो लफ्ज है ये मौसूफ हो रहा है अलम होने के साथ, अलम होना इसकी सिफत है भाई। और इसी तरह आजमी होना इसकी सिफत है। तो ये असबाब मनासर्फ औसाफ की कबील से हैं और आपने जो वसफ जिक्र कर दिया वो जात की कबील से है भाई, क्यों? वो खास इसम का नाम है, वो खास इसम का नाम है। बात समझ में आ रही है? तो देखो उमर किस सिफत के साथ मौसूफ हो रहा है? अलमियत और अदल। ये जो अलमियत देखो अलम होना मस्तर जिक्र हो रहा है, अदल अदल ये भी मस्तर है भाई, इसम का मादूल होना। और इसी तरह उजमा लफ्ज का अजमी होना, देखो ये मस्तर है। याद रखो मस्तर एक माना का नाम है, खारिज में इसका वजूद नहीं, ये किसी की सिफत बनता है। जराबा जैदुन, देखो जैद ने जर्ब लगाई तो जर्ब जैद की सिफत बन गई, जर्ब जैद की। तो मस्तर जो है याद रखो ये जात नहीं है, ये एक माना का नाम है जिसका खारिज में वजूद नहीं, ये किसी की सिफत बनता है। तो ये जितने असबाब मनासर्फ हैं आप देख लें ये औसाफ की कबील से हैं, जात की कबील से नहीं है। और आपने किसको जिक्र कर दिया? वसफ को। और वसफ तो किसका नाम है? वो एक मखसूस इसम का नाम है यानी जात का नाम है। किसका नाम है भाई? लगता है अभी भी बात समझ में नहीं आई भाई। देखो एक होती है जात, एक है उसका वसफ। जात से मुराद ये, जात का ये माना नहीं जिसका खारिज में अलग वजूद हो, नहीं नहीं, जात का माना, जात से मुराद ये है जिसके बारे में खबर दी जा सके, जिसके बारे में, जिसके बारे में खबर दी जा सके, यानी उसको मुब्तदा बनाएं और उसके लिए खबर ले आएं, या उसको मौसूफ बनाएं उसकी सिफत ले आएं। मैंने आपको बताया सिफत का भी हमल होता है मौसूफ पर। रजुलुन शुजाउन, ये शुजा कौन है? रजुल है। तो शुजा सिफत का हमल हो रहा है किस पर? रजुल पर। तो जात वो है जिसके बारे में खबर दी जा सके। अभी भी शायद आपको बात समझ में ना आई हो। ये जितने असबाब मनासर्फ हैं ये हैं औसाफ, और ये जो वसफ जिक्र किया ये एक मखसूस इसम का नाम है, ये है जात भाई, ये है जात। देखो फिर जरा गौर करो, उमर ये एक इसम है, आलम है ना, और आलम भी क्या होता है? इसम होता है। तो उमर एक आलम है और इसकी सिफत क्या? आलमियत, आलम होना इसकी सिफत है। तो देखो इसम हुआ जात और अलमियत हुई उसकी सिफत। इसी तरह इसकी दूसरी सिफत क्या है? अदल। ये उमर इसम है और इसका मादूल होना ये इसकी सिफत है। फातिमा तु, फातिमा एक इसम है और मुअन्नस होना इसकी सिफत है। इसी तरह आलम होना इसकी सिफत है। तो मालूम हुआ फातिमा लफ्ज ये है जात और मुअन्नस होना और आलम होना ये इसकी सिफत है भाई। देखा जात और सिफत का फर्क समझ में आ रहा है? जो इसम है वो बन रहा है मौसूफ यानी वो है जात भाई, वो है जात। या दूसरा देख लो इब्राहिमा, इब्राहिमा देखो ये एक इसम है और इसकी सिफत क्या है? आलमियत, आलम होने के साथ ये मौसूफ है। तो ये इसम खुद क्या है? मौसूफ, और आलमियत इसकी सिफत। देखा ये मौसूफ है यानी ये जात है और आलमियत इसकी सिफत। इसी तरह ये मौसूफ है ये इब्राहिमा मौसूफ है और उजमा इसकी सिफत है, उजमा इसकी सिफत है, इसमें उजमा का वसफ पाया जा रहा है। तो इसम जात है और ये जो असबाब मना सर्फ हैं ये क्या हैं, ये औसाफ। इब्राहिमा के अंदर कौन सा वसफ है, अलमियत, और कौन सा वसफ है, उजमा। ये उजमा और अलमियत क्या है, असबाब मना सर्फ है ना, तो देखो इसम है जात और ये असबाब मना सर्फ उनके लिए सिफत बन रहे हैं। मालूम हो ये असबाब मना सर्फ किस कबील से हैं, आराज के कबील से हैं, और वसफ जो है वो तो एक खास इसम का नाम है और इसम वो तो मौसूफ बनता है, उसके अंदर ये असबाब मनासर पाए जाते हैं, तो वो हुआ जात, वो हुआ मौसूफ और ये असबाब मनासर्फ उसके लिए सिफत हुए। तो असबाब मनासर्फ सिफत की कबील से हैं और इसम जो है वो जात की कबील से है। बात समझ में आ गई, तो ये इश्काल होता था यहां पर भाई। तो साहिबे जामी अब उसका जवाब देंगे, देखिए भाई किताब पर, भाई इस वसफ का क्या माना मैंने किया, वसफ किसे कहते हैं, एक मखसूस इसम का नाम है और उसकी क्या तारीफ है, अलवसफु हुआ इस्मुन दालुन अला जातिम मुबहमतिम माखूजतिम मा बाजी सिफातिहा, वो इसम जो दलालत करने वाला हो जात मुभामा पर और वो मलहूज हो अपनी बाज़े सिफात के साथ वो जात भाई, इसको कहते हैं वसफ। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे भाई, साहिब जामी, कि ये जो वसफ है यहां पर जात नहीं मुराद, यहां इससे वो इसम नहीं मुराद जो जात है, बल्कि कौनुलिस्म मादूलन, देखिए इबारत पर नजर है, वह हुआ कौनुलिस्म दालन, इसम का दलालत करने वाला होना। देखा मस्तरी माना कर दिया, कौन सा माना कर दिया, इसम का दलालत करने वाला होना। देखो ये अब वसफ बन गया, मस्तरी माना कर दिया, और मस्तर तो जात का नाम नहीं है, मस्तर तो किसका नाम है, वसफ का नाम है जो किसी की सिफत बनता है। बात समझ में आ गई, तो इसलिए साहिब जामी ने कहा अलवसफू वह हुआ कौनुल इस्मी दालन, वो इसम का दलालत करने वाला होना। मैं किस चीज पर दलालत करने वाला, अलाजातिम मुबहमतिन, एक ऐसी मुबहम जात पर, माखूजतिम माबाज सिफातिहा, जो मलहूज हो अपनी बाज सिफात के साथ। जारिबुन एक मुबहम जात पर दलालत कर रहा है और इसमें मलहूज है बाज़े सिफात भी भाई, कि वो क्या हो, उसमें जारिब होने वाली सिफत हो भाई। अहमर, अहमर ये एक इसम है, तो ये दलालत कर रहा है एक मुबहम जात पर और वो जात उसमें उसकी बाज़े सिफात यानी हुमरा, हुमरा यानी सुर्खी मलहूज है कि उसमें सुर्खी है भाई। तो देखा साहिब जामी ने वसफ का माना इस्मुन दालुन के साथ नहीं किया, क्योंकि वरना तो फिर जात बन जाती है और असबाब मनासर्फ तो सिफात हैं भाई, वो जात नहीं है। तो लिहाजा साहिब जामी ने अल वसफ का माना किसके साथ बयान किया, कौनुल इस्म दालन, इसम का दलालत करने वाला होना। देखा मस्तरी माना कर दिया, तो बतलाया कि ये भी यहां आराज की कबील से है, जात की कबील से नहीं है भाई। तो कहते हैं वह हुआ कौनुल इस्मी दालन अला जातिम मुबहमतिम माखूजतिम मा बाज़ सिफातिहा, वो इसम का दलालत करने वाला होना ऐसी जात पर जो मुबहम हो और मलहूज हो अपनी बाज़ सिफात के साथ। बल्कि याद रखो कौनुल इस्मी दालन, ये कौन शय इशय अन, इसके साथ हासिल बिल मस्तर को बयान किया जाता है, किसको, हासिल बिल मस्तर। और जरा गहराई में आपको ले जाएं भाई, तवज्जो से सुनो, बतलाना ये चाहते हैं कि यहां वसफ जो है उससे जात वाला माना भी नहीं मुराद, मस्दरी माना भी नहीं मुराद, बल्कि हासिल बिल मस्तर मुराद है। क्या मुराद है, हासिल बिल मस्तर। मैंने आपको बतलाया था कि मस्तर का खारिज में कोई वजूद नहीं, मस्तर एक माना का नाम है, किसका नाम है, माना का नाम है। तो खारिज में आपको मस्तर दिखाई नहीं दे सकता, खारिज में मस्तर का वजूद है ही नहीं, तो दिखाई कहां से दे, ये एक माना है, एक वसफ है भाई। हां मस्तर से जो हैअत और सूरत हासिल हो या मस्तर का जो असर होता है वो हमें दिखाई देता है, मस्तर का जो असर होता है वो उस वो हमें दिखाई देता है, खुद मस्तर दिखाई नहीं देता। आपको खारिज में कभी जर्ब नजर नहीं आएगी, खारिज में, क्योंकि जर्ब मस्तर है। आप कहेंगे नहीं, हमें तो जर्ब नजर आती है, कोई एक शख्स दूसरे की पिटाई कर रहा है, देखो ये जर्ब पाई जा रही है। नहीं भाई, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मस्तर नहीं है, ये हासिल बिल मस्तर है। उस जर्ब की वजह से जो असर हासिल हुआ, जो सूरत हासिल हुई, जो असर हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। तो यूं को उर्दू में जरा वजाहत हो जाती है, खारिज में आपको पिटाई करना यह है मस्तर, खारिज में आपको पिटाई करना नहीं नजर आता, खारिज में आपको पिटाई नजर आती है। देखो पिटाई करने से जो हालत हासिल हुई वो क्या है, पिटाई है, आपको पिटाई नजर आती है। या यूं कहो दूसरे लफ्जों में, मस्तर है जर्ब का माना है मारना, खारिज में आपको मारना कभी नहीं नजर आएगा, बल्कि खारिज में उससे जो सूरत हासिल हुई यानी मार, आपको खारिज में मार नजर आएगी। बात समझ में आ गई। इसी तरह हंसना मस्तर है, खारिज में आपको कभी हंसना नहीं नजर आएगा, खारिज में आपको हंसी नजर आएगी। भाई तो मस्तर खारिज में दिखाई नहीं देता, क्योंकि मस्तर का खारिज में कोई वजूद है ही नहीं कि दिखाई दे। हां, उस मस्तर से जो कैफियत और जो सूरत हासिल होती है, यूं कहो जो मस्तर का असर होता है वो हमें दिखाई देता है। तो यहां हासिल बिल मस्तर मुराद है, और उसको कौन के साथ ताबीर करते हैं, कौनुल इस्मी दालन, इसम का दलालत करने वाला होना, इसम का दलालत करने वाला होना। जैसे और तफसील जरा समझ लो, मैंने क्या बताया, हासिल बिल मस्तर किसे कहते हैं, मस्तर का जो असर होता है उसको क्या कहते हैं, हासिल बिल मस्तर। और मस्तर से जो सूरत हासिल हो खारिज में, जो हैअत हासिल हो, हैअत का माना सूरत, जो हैअत हासिल हो खारिज में वो हमें नजर आती है, हमें हंसना नहीं नजर आता, हमें हंसी नजर आती है, हमें पिटाई करना नहीं नजर आता, हमें पिटाई नजर आती है। चलना, हमें खारिज में चलना नहीं नजर आता, हमें खारिज में चाल नजर आती है। हमें रफ्तन, रफ्तन का माना जाना, हमें रफ्तन नजर नहीं आता, हमें रफ्तार नजर आती है। जो मस्तर से सूरत हासिल हो गई वो हमें दिखाई देती है। और तफसील समझो, देखो जैद ने जर्ब लगाई, जैद ने जराबा जैदुन अमरन, जैद ने अमर की पिटाई की, तो जर्ब मस्तर पाया गया। तवज्जो है, ये जर्ब मस्तर पाया गया, लेकिन ये हमें जर्ब नहीं नजर आई, जर्ब का असर नजर आया, जर्ब का और असर क्या है, यानी वो पिटाई नजर आई हमें, क्या नजर आई, पिटाई। या यूं कहो जैद का जारिब होना हमें नजर आया और अमर का मजरूब होना हमें नजर आया, खुद जर्ब नहीं नजर आई। जराबा जैदुन अमरन, जैद ने अमर की पिटाई की, देखो जर्ब मस्तर पाया गया, इस मस्तर का क्या असर हुआ कि जैद जारिब बना और अमर मजरूब बना, तो हमें खारिज में जर्ब नहीं नजर आई, हमें जैद का जारिब होना नजर आया। इस जर्ब से जो सूरत हासिल हुई, जो कैफियत हासिल हुई, यानी जैद का जारिब होना हमें नजर आया और अमर का मजरूब होना। जब देखो जर्ब पाई गई, यह जर्ब जैद की सिफत बन गई और यही जर्ब अमर की भी सिफत बन गई, लेकिन जैद की सिफत है यह जर्ब किस एतबार से, कि जैद जारिब है, और यही जर्ब अमर की सिफत भी है, लेकिन किस एतबार से, कि अमर मजरूब है, तो इस जर्ब की वजह से जैद के अंदर जारिब होने वाली सिफत आ गई, जैद के अंदर जारिब होने वाली सिफत आ गई। आई कौनु जैदिन जारिबन, कौनु जैदिन जारिबन, क्या तर्जमा, जैद का जारिब होना यह हमें नजर आया खारिज में, और यही जर्ब किसकी सिफत बनी, अमर की भी सिफत बनी, और किस तरह, कौन अमरीन मजरूबन, अमर का मजरूब होना यह हमें खारिज में नजर आया। तो यह जर्ब का क्या असर हुआ, कौन जैदिन जारिबन, या यूं कहो जारिब होना यह जैद की सिफत बन गई, मजरूब होना यह अमर की सिफत बन गई, और यह जो सिफत बनी यह मस्तर नहीं है, यह हासिल बिल मस्तर है। इस जर्ब की वजह से जैद को कौन सी सिफत हासिल हुई, जारिब होने वाली, और अमर को कौन सी सिफत हासिल हुई, मजरूब होने वाली। तो ये हासिल बिल मस्तर है। तो मस्तर तासीर का नाम है और हासिल बिल मस्तर उस असर का नाम है। देखो जर्ब हुई, जर्ब हुई तो जर्ब एक तासीर है, जर्ब क्या है, और इस तासीर का असर क्या हुआ, زید کا ضارب ہونا اور عمر کا مضروب ہونا، تو ہمیں زید کا ضارب ہونا نظر آیا، ہمیں عمر کا مضروب ہونا نظر آیا، تو ضارب ہونا کس کی صفت؟ زید کی، اور مضروب ہونا کس کی صفت؟ عمر کی. تو یہاں پر بھی کون الاسمی، کون الاسمی دالن، اسم کا دال ہونا، دیکھا یہ حاصل بالمصدر ہے، یہ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر یہاں پر مراد ہے. جیسے عدل کے اندر آیا تھا، دیکھیے ذرا عدل والی عبارت نکالیے بھائی، جہاں عدل کی بات شروع ہوئی تھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ فالعدل مصدر مبنی للمفعول، کہ عدل جو ہے یہ مصدر مبنی للمفعول ہے. اے کون الاسم معدولا، اسم کا معدول ہونا، اسم کا، دیکھو متکلم نے، ادھر دیکھیے متکلم نے ایک اسم کو پھیرا ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف، تو یہ پھیرنا، یہ پھیرنا یہ اس کلمے کی صفت بن گیا، لیکن یہ مصدر نہیں بلکہ حاصل بالمصدر، اور وہ کیا ہے؟ اس اسم کا معدول ہونا، اسم کا، تو یہ اسم کو جب پھیرا گیا ہے تو معدول ہونا اس کی صفت بن گیا بھائی، معدول ہونا صفت بن گیا، تو یہ اسم موصوف ہو گیا معدول ہونے کے ساتھ، اور وہ جس سے پھیرا ہے وہ موصوف ہو گیا معدول عنہ ہونے کے ساتھ، اس سے پھیرا گیا ہے. جیسے عمر کو کس سے پھیرا؟ عامرون سے، تو عمر موصوف ہو گیا کس کے ساتھ؟ معدول ہونے کے ساتھ، معدول ہونا اس کی صفت بن گیا، اور عامرون وہ موصوف ہو گیا کس کے ساتھ؟ معدول عنہ ہونے کے ساتھ، کہ اس سے پھیرا گیا ہے. تو اسی لیے صاحب جامی نے وہاں پر عدل کا معنی کیا بیان کیا تھا؟ کون الاسم معدولا، اسم کا معدول ہونا. اور اسی طرح خروج کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ کون الاسم مخرجا، اسم کا مخرج ہونا، یعنی وہ جو حاصل بالمصدر ہے وہ صفت بنتی ہے، مصدر صفت نہیں بنتا. ضرب مصدر خارج میں پایا گیا، زید نے ضرب لگائی عمر کو، تو ضرب کا مصدر خارج میں پایا گیا، اور اس ضرب کی وجہ سے یہ ضرب زید کی بھی صفت بنی اور عمر کی بھی صفت بنی. لیکن یہ ضرب مصدر صفت بنی یا حاصل بالمصدر؟ حاصل بالمصدر، اور وہ کیا ہے؟ زید کا ضارب ہونا، تو ضارب ہونا یہ زید کی صفت ہوا، اور یہی ضرب عمر کی بھی صفت بنی، لیکن مصدر نہیں بلکہ حاصل بالمصدر، یعنی اس مصدر کا جو اثر ہے، اور وہ مضروب ہونا. تو ضارب ہونا، دیکھو ضارب ہونا، دیکھو ترجمہ وہی مصدری انداز میں ہے، اور مضروب ہونا دیکھو یہ بھی مصدر والا ترجمہ، لیکن یہ حاصل بالمصدر ہے. تو دیکھو اردو میں، اردو میں جیسے میں نے بتایا ہمیں خارج میں پٹائی کرنا نہیں نظر آتا، پٹائی نظر آتی ہے، پٹائی کرنا ہے مصدر اور پٹائی ہے حاصل بیل مصدر. ہمیں خارج میں ہنسنا نہیں نظر آتا بلکہ ہمیں خارج میں ہنسی نظر آتی ہے، ہنسنا ہے مصدر اور ہنسی ہے حاصل بیل مصدر. ہمیں خارج میں مارنا نظر نہیں آتا، ہمیں خارج میں مار نظر آتی ہے، تو مارنا ہے مصدر اور مار ہے حاصل بیل مصدر بھائی. ہمیں خارج میں چلنا نہیں نظر آتا، چلنا ہے مصدر اور چال ہے حاصل بیل مصدر ہے بھائی. تو ہمیں خارج میں حاصل بالمصدر نظر آتا ہے. اردو میں دونوں میں فرق ہے، مصدر کے لیے الگ لفظ ہے، حاصل بالمصدر کے لیے الگ ہے. مصدر کے لیے ہے ہنسنا، مارنا، پٹائی کرنا، اور حاصل بالمصدر کے لیے ہے ہنسی، پٹائی اور مار بھائی. دیکھا اردو میں دونوں میں فرق ہے، لیکن عربی کے اندر وہی مصدر والا لفظ جو ہے مصدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصل بالمصدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر مصدر معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مصدر مجھول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی، اور اس ضرب کا معنی پٹائی کیے جانا یعنی پٹائی ہونا بھی، معروف بھی ہے اور مجھول بھی ہے. اور پھر یہ حاصل بالمصدر کے لیے بھی یہی ضرب استعمال ہوگا، تو اسی ضرب کا معنی ضارب ہونا بھی اور اسی ضرب کا معنی مضروب ہونا بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ جو اسباب منع صرف ہیں ان کا معنی صاحب جامی کون الاسم معدولن، کون الاسم مخرجن، کون الاسم دالن، یہ کون کے ساتھ کر رہے ہیں، بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ کیا مراد ہے یہاں پر؟ حاصل بالمصدر مراد ہے، کیونکہ صفت جو بنتی ہے کسی کی وہ حاصل بالمصدر بنتا ہے، مصدر خود صفت نہیں بنتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی اب کتاب پر، तो कहते हैं अलवस्फ वह कौनुल इस्मि दालन अला जातिम मुबहमतिम माखूजतिम मा बाज़ सिफातिहा, वसफ जो है वो इसम का दलालत करने वाला होना ऐसी जात पर जो मुबहम है और माखूज है अपनी बाज़ सिफात के साथ। देखा इसम का दलालत करने वाला होना, ये देखा ये इसम के अंदर ये माना आ जाएगा, ये उसकी सिफत बन जाएगा। सवा उनकानत हादिही दलालत, वसफ किसे कहते हैं कि इसम दलालत करने वाला हो जात मुभामा पर और उसमें उसकी बाज़ सिफात भी मलहूज हों। फिर ये जो इसम का दाल होना है ये कभी असले वजा के एतबार से होगा कि वजा ही इसम को इस तरीके पर किया गया है कि वो जात मुभामा पर दलालत करे भाई, और कभी कभार वजा के एतबार से तो वह ऐसा नहीं, अलबत्ता इस्तेमाल के एतबार से वो किसी जात मुभामा पर दलालत करता है बाज़ सिफात के साथ भाई। तो कहते हैं सवा उनकानत हादिही दलालतु बिहसबिल वज़ई, बराबर है कि यह दलालत करना जो है वजा के एतबार से हो, मिसलु अहमारा जैसे कि अहमारा, अहमारा का क्या माना सुर्ख चीज, कोई सुर्ख चीज भाई। तो देखो एक जात मुभम पर दलालत कर रहा है और उसमें वसफ सुर्खी भी मलहूज है, वो जात किस किस्म की हो उसमें कौन सा रंग हो सुर्खी वाला। तो कहते हैं मिसलु अहमरा जैसे अहमरा, फइन्नहु मौज़ूउन लिज़ातिम मा, इसको वज़ा किया गया है किसी जात के लिए, जातिन है नकेरा, जातिन है नकेरा, नकेरा तो गैर मुअय्यन पर दलालत करता है कोई जात, और आगे मा लाकर फिर उसी के इबहाम में ताकीद पैदा कर दी जाती है, जात के अंदर इबहाम था कौन सी जात, मा लाकर उसी इबहाम को और पक्का कर दिया गया। लिजातिम्मा कोई एक जात, कोई एक जात, तर्जमा समझ में आ रहा है, फइन्नहु मौज़ूउन लिजातिम्मा इसलिए क्योंकि इसको वजा किया गया है लिजातिम्मा किसी जात के लिए, उखिजत मा बाज़ सिफातिहा जो माखूज है यानी मलहूज है अपनी बाज़ सिफात के साथ। भाई बाज़ सिफात कौन सी, कहते हैं अल्लती ही अलहुमरतु वो जो कि सुर्खी है, जो मलहूज है अपनी बाज़ सिफात यानी सुर्खी के साथ। तो देखो इसमें यह दलालत जो है वजा के एतबार से है, और बिहसबिल इस्तेमाल या वो दलालत जो है इस्तेमाल के एतबार से होगी, मिसलु अरबाइन जैसे अरबाउन का लफ्ज है, फी मरर तो बिन निस्वतिन अरबाइन इस मिसाल के अंदर, फइन्नहु मौज़ूउन लिमरतबतिन मुअय्यनतिन मिन मरातिबिल अददी इसलिए क्योंकि अरबा का लफ्ज इसको वजा किया गया है लिमरतबतिन मुअय्यनतिन एक मुअय्यन मरतबे के लिए, एक मुअय्यन दर्जे के लिए, मिन मरातिबिल अददी अदद के दर्जों में से, अदद के दर्जों में से एक मुअय्यन दर्जे के लिए अरबा का लफ्ज वजा है, और वो तीन से बड़ा है और पांच से छोटा है, उस मुअय्यन मरतबे के लिए अरबा का लफ्ज वजा है, यह किसी वसफ के लिए वजा नहीं है। तो इसको वजा किया गया है अदद के मरातिब में से एक मुअय्यन मरतबे के लिए, फला वस्फियत फीही बिहसबिल वज़ई तो इस अरबा के अंदर कोई वस्फियत नहीं है वजा के एतबार से, बल कद तारिजुहुल वस्फियतु हां कभी कभार इसको वस्फियत हारिज आ जाती है, कमा फिल मिसाल इल मजकूरी जैसे कि इस मजकूरा मिसाल में है, कौन सी जो ऊपर गुजरी मरर तो भी निस्वतीन अरबाइन, इसमें अरबाइन को वसफियत आरिज हो गई पेश आ गई, खुद ये वसफ के लिए वजा नहीं है। फइन्नहु लम्मा उजरिया फीही अलन निस्वती ये इबारत समझ लो, फइन्नहु इसलिए क्योंकि लम्मा जब उजरिया इस अरबा को जारी किया गया, इस अरबा को जारी किया गया फीही इस मिसाल में जो पीछे गुजरी मरर तो बिनिस्वतिन अरबाइन, देखो इस मिसाल पे नजर रखो, इस मिसाल में अरबाइन को निस्वा पर जारी किया गया यानी उसकी सिफत बनाया गया, अरबा तो आदत का नाम था लेकिन यहां पर अरबा को किस पर जारी कर दिया गया निस्वा पर, जारी करने का क्या माना उसकी सिफत बनाया गया। फइन्नहु लम्मा उजरिया फीही इसलिए क्योंकि ये जो अरबाइन का लफ्ज है जब इसको जारी किया गया फीही इस मजकूरा मिसाल में अलन निस्वती किस पर जारी किया गया निस्वा पर, अल्लती हिया मिन कबील मादूदात लल आदादी वो निस्वा जो कि मादूदात की कबील से है आदाद की कबील से नहीं, अदद वो तो मुअय्यन मर्तबों का नाम है, और निस्वा वो अदद नहीं है, वो तो मादूद है जिनको गिना जाता है भाई। तो अरबा के लफ्ज को किस पर जारी किया गया? निस्वा पर, और निस्वा वो तो अदद नहीं है बल्कि क्या है? मादूद है। तो मालूम हुआ कि यहां इसको वसफ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अदद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर देखिए, देखो लम्मा उजरिया फीही अला निस्वा अजरा शय अला शय, इनका माना होता है एक शय को दूसरी शय पर जारी करना, यानी उसको उसकी सिफत बनाना, एक शय को दूसरी शय के सिफत बनाना। तो यहां भी अरबा को निस्वा पर जारी किया गया, यानी उसके लिए सिफत बनाया गया। फइन्नहु लम्मा उजरिया फीही अला निस्वती, इसलिए क्योंकि अरबा के लफ्ज को जब इस मिसाल के अंदर निस्वा पर जारी किया गया, वो निस्वा अल्लती ही मिन कबील मादूदात लल आदादी, वो निस्वा जो कि मादूदात की कबील से है न के आदाद की, तो उलिमा, तो ये बात मालूम हो गई। जब इसको निस्वा पर जारी किया गया तो यह बात मालूम हो गई कि अन्ना मानाहु मरर्तु बिन निस्वतिन मौसूफतिन बिल अरबाइयति, कि इसका माना यह है कि मैं ऐसी औरतों पर गुजरा जो मौसूफ हो रही थी अरबा होने के साथ, जो मौसूफ हो रही थी। और मालूम हुआ यह सिफत बन रहा है यहां पर, यहां अदद मुराद नहीं है। वहादा मानम वस्फी युन आरजा लहू फिल इस्तेमाल, और ये ऐसा वस्फी माना है आरजा लहू जो इस अरबा को आरिज आ गया, पेश आया है फिल इस्तेमाल, किसके अंदर? इस्तेमाल में। ला असली युन, ये माना असली नहीं है बिहसबिल वज़ई, वज़ा के एतबार से। ये जो अरबाइन में वसफ वाला माना आया है ये इसको इस्तेमाल की वजह से आरिज हुआ है, ये असली माना वजा के एतबार से असली नहीं है। यह माना है वहादा मानव वस्फीयुन आरज लहू फिल इस्तेमाली ला असलीयुन बिहसबिल वज़ई, इसलिए क्योंकि यह ऐसा वस्फी माना है जो इस अरबा को आरिज हुआ है इस्तेमाल के अंदर, न कि ये असली है बैतबार वजा के। वल मोतबरु फी सबबियति मनइस सर्फी हुवल वस्फुल असलियु, और मोतबर जो है मना सर्फ का सबब होने में हुवल वस्फुल असलियु, वो वस्फे असली है, वो मोतबर है, वो मने सर्फ का सबब बनता है। लि इसालति ही, अपने असल होने की वजह से वो सबब बनता है गैर इंसिराफ का, अपने असल होने की वजह से। लल अर्जीयु लि अर्जीयति ही, ना के अर्जी, बात क्या हुई? मना सर्फ के अंदर सबब होने में जो मोतबर है वो वस्फे असली है अपने असल होने की वजह से। लल अर्जीयो, वस्फे अर्जी नहीं है लि अर्जीयति ही, अपने अपने अर्जी होने की वजह से, अपने अर्जी होने की वजह से ये अर्जी सबब नहीं बनेगा। बात समझ में आया? तर्जमा समझ में आया? कहते हैं वल मोतबर उफी सबबी यति मन इस सर्फी वल वस्फुल असली यो, और मोतबर जो है मना सर्फ का सबब होने में वो वस्फे असली है इसालति ही, अपने असल होने की वजह से ये मोतबर है। लल अर्जीयो, वस्फे अर्जी मोतबर नहीं है, क्यों नहीं मोतबर? लि अर्जीयति ही, अपने अपने आरजी होने की वजह से। भाई अच्छा, बात सारी समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।